ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் முண்டகோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ சிவ் சரூப்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
இஸ்மே தோ நீ ஹே, லேக்கின் ஜேசே பிராதாரணக் ஹே யா சாந்தோக் ஹே, இஸ்மே அந்திம் ஜோ அத்யாய ஹே, அந்திம் அத்யாய மே ஜோ கண்ட ஹே, உஸ்மே பிரம்ம வித்யா கே வம்ச கா ஆப் எக் படத்தே நா, பிரம்ம வித்யா சம்பிரதாய ரிஷிபியே சே படத்தே ஹோ நா மங்களாச்சரண மே, தி ஏக பிரம்ம வித்யா சம்பிரதாய கி பரம்பரா பி ஹே, तो उस परंपरा का अनुसरण करते हुए इस दूसरे मंत्र में ये बात बताई है कि किससे कौन प्राप्त किया. तो ब्रह्मा ने पहले ब्रह्म विद्या का उपदेश अथर्वण को किया और फिर मेरे नारायण ये अथर्वण ने अंगी को किया. अंगी और अंगी का अर्थ है नारायण श्रुतियों में और शायद भाष्य में भी, भाष्य तो अभी हमें मिला नहीं और बहुत दिन हो गए तो देखा भी नहीं. तो अंगी का मतलब होता है मतलब ये शरीर, अंगम अस्यास्ति अंगी अति जीव, नारायण 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 अंग है जिसके, जैसे दंडम अस्यास्ति दंडी कहते हो ना, जिसके हाथ में दंड होता है उसे दंडी. और अंगी का मतलब होता है कि महाराज जीव को या ये ब्रह्म विद्या के तीसरे जो आचार्य हैं उनका अंगी नाम था. तो उनको महाराज ब्रह्म विद्या दिया और फिर सा वही अंगी ने भरद्वाज को दिया और फिर भरद्वाज ने सत्यवाह को दिया और सत्यवाह ने भरत नारायण नारायण ने सत्यवाह को दिया और फिर ये नारायण भरद्वाज ने अंग्रेज को दिया नारायण नारायण. इस प्रकार से ये जो आपकी ब्रह्म विद्या है ये गुरु परंपरा से प्राप्त है. ये नारायण है, कोई इसमें हेर फेर नहीं हो सकता है. सत्य की प्राप्ति के लिए जो विद्या है वह विद्या गुरु परंपरा से प्राप्त है. ये नारायण कोई काल्पनिक अपनी कल्पना से, जैसे कि आपको निवेदन करूं कि आज के लोग समय का और नारायण समर्थ का वस्तु का ध्यान न रख करके कुछ काल्पनिक महाराज संप्रदाय और ये सब चालू हो गए हैं फिर का प्रश्न. सो यहां ऐसा नहीं होता है. जैसे आपको एक उदाहरण बताऊं, हमने भागवत में पढ़ा था एकादश स्कंध में कि चार युग होते हैं. चार युगों में अलग अलग अवतार और अलग अलग उनकी वेशभूषा और अलग अलग उनके उपासक, अलग अलग उनके नाम होते हैं. तो आपने सुना होगा कि सतयुग में नारायण सिर्फ व्यक्ति का अंतःकरण इतना शुद्ध होता था, इतना पवित्र होता था कि कुछ और करने की जरूरत नहीं है. स्वाभाविक समदमादि की प्रतिष्ठा होने के कारण जब वो चाहता था तभी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता था. आपने ये सुना होगा सतयुग में समाधि सहज थी. समाधि का मतलब अपने जो निखिल सामर्थ्य मूर्ति है प्राणी पर प्रेमास्पद चिद रूप है, सद रूप है, आनंद रूप है, उसमें प्रतिष्ठा सहज ही हो जाती थी बिना प्रयत्न के, बिना प्रयास के. वह युग ऐसा था. उस युग में कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी. फिर आपने सुना था कि त्रेता आरंभ हुआ तो उसमें लोग फिर यज्ञ करते थे और कहते हैं रजोगुण मिल गया था, समाधि लाभ नहीं हो सकता था, इसलिए साधना में परिवर्तन हुआ, यज्ञ से यजन करके परमात्मा को प्राप्त करते थे. आपको संक्षेप में बता रहा हूं. द्वापर में फिर पूजा करते थे लोग. अब यहां कुछ थोड़ा सा नारायण है रजोगुण बढ़ गया, तमोगुण भी मिल गया था, इसलिए यहां वेद का ठीक से विज्ञान न होने के कारण त्रेता का जो यज्ञ था नारायण, वेद के ज्ञान के अभाव में ठीक से वहां यज्ञ की संभावना न होने से पूजन करते थे लोग द्वापर में। कलयुग में ये तीनों काम नहीं हो सकते हैं, तो नारायण ने फिर क्या किया, फिर कीर्तन के लिए विधि बनाई कीर्तन। अब आपको फिर एक शंका हो सकती है कि बाबा ये अब कीर्तन हो रहा है क्या, ये जो आप कर रहे हो, तो पहले मैं बता दूं उसको जो जिस प्रसंग में बता रहा था कि नारायण अब आज तो देखो भाई किस किस प्रकार से आप लोगों की समाधि लग जाती है सो हमको नहीं मालूम है, पर ये देश काल परिस्थिति पदार्थ के अनुसार ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए हर युग में भिन्न भिन्न प्रकार की साधना बताई गई थी और आज उसके विपरीत भी देखा जा रहा है। पर यहां ये जो हमारी नारायण ये गुरु परंपरा है ना, मैंने सत्य की प्राप्ति और किसी ढंग से नहीं हो सकती है और किसी उपाय से नहीं हो सकती इस गुरु परंपरा से। अब आप कहो कि कलयुग में तो कीर्तन ही करना है, तो कीर्तन ही तो हम कर रहे हैं, हम कौन से नारायण समाधि आपकी लगवा रहे हैं। तीन प्रकार का कीर्तन होता है, जैसे विष्णु सहस्रादि जो नाम है उनमें नाम कीर्तन है, विष्णु सहस्र नाम है ना, ओम विश्वम विष्णुर्भटकारो भूत भव्य भूपभू भूतात्मा, तो ये नाम कीर्तन है भगवान के नाम, विष्णु सहस्र नाम है, शिव सहस्र नाम है और तमाम सहस्र नाम है। और महाराज पुराण आप सुनते हैं उसमें लीला कीर्तन है, भगवान की लीलाओं का कीर्तन है, कीर्तन है कि नहीं, इसमें कौन सा कीर्तन है, इसमें स्वरूप कीर्तन है, भगवान की स्वरूप का कीर्तन किया जा रहा है, नारायण नारायण। तो ये न समझ लेना कि भाई हमने कहीं आक्षेप किया है तो बाबा जी भी तो उसी में हैं, तो हम तो नारायण लकीर के फकीर हैं, हमारा तो शास्त्र पर विश्वास है। तो आइए देखिए ये परंपरा इसलिए बता रहे हैं कि ये कोई ये विद्या ब्रह्मा से चली है नारायण। और फिर अस्मदाचार्य पर्यंतम सुना है ना, ये परंपरा से। एक निवेदन और करूं, गीता के 13 अध्याय के दूसरे श्लोक के भाष्य में एक बात लिखी है, ये परंपरा के दृष्टांत में उदाहरण में आपको बता दूं, उसमें लिखी है कि ये सर्वशास्त्र विद असंप्रदाय विद मूर्खोद उपेक्षणीय, उसमें ये बात भगवान शंकराचार्य ने लिखी है कि समस्त शास्त्र का ज्ञाता हो और संप्रदाय विद हो असंप्रदाय विद, संप्रदाय परंपरा से न श्रवण किया हो न पढ़ा हो तो मूर्ख हो तो पेक्षणीय ले। तो अब आपको इससे पुष्टि हो जाएगी कि ये जो गुरुओं के नाम ले रहे हैं क्रम से इनका क्या मतलब है, क्योंकि जिन्होंने संप्रदाय परंपरा से नहीं श्रवण किया है नहीं अध्ययन किया है वह अनात्मा को ही आत्मा मान बैठेंगे। इसलिए पहले अथर्वण को महाराज ब्रह्मा ने दिया जी ब्रह्म विद्या को, और फिर अथर्वा ने अंगिरा को दिया, और फिर अंगिरा ने भरद्वाज को दिया, फिर नारायण ने फिर नारायण सप्तवाह को मिली ये विद्या, फिर भरद्वाज उस पूर्ण संग्रह को मिली। तो आपसे ये निवेदन कर रहा था कि गुरु परंपरा। अब आइए देखिए तीसरा, नारायण नारायण सौनको हावई महासालो अंगिरसम विधवदुपसन्ना पप्रच्छ कस्मिन् नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति। आप देखो भाई सौनक जी हैं, सौनक इनकी आपने कथा पुराण में भी सुनी होगी, ये सौनक महासाल हैं। महासाल का मतलब होता है कि इतने बड़े बड़े यज्ञ करते थे ये, कि इनके यहां 88,000 ऋषि बहुत ऋषि रहते थे, वही तो महासाल हो सकता है जिनकी यज्ञ में इतना विस्तृत सामग्री और इतनी विस्तृत व्यवस्था ऋषियों के लिए हो, उसको महासाल कहते हैं। तो सौन को महासाल अंग्रेसम विधिवत उपसन्ना, अंग्रेस के पास आए, और यहां विधिवत का वर्णन है, विधिवत नारायण मैंने उपसन्न होने का भी एक ढंग है, एक तरीका है जी। आजकल तो देखो भाई, पहले लोग चरण छूते थे, फिर कुछ काल क्रम से हाथ जोड़ने लगे, हाथ जोड़ना भी ठीक है, और फिर नारायण है वो बाएं हाथ से जांग छूने लगे, जंगा जानते हो ना, और फिर आजकल अपने बच्चों को महाराज टाटा बताने लगे ऐसे करने, जिसका मतलब है कि न तुम्हारे काम के न हम तुम्हारे काम के। टाटा का मतलब क्या होता है, यही तो हुआ और क्या। हाँ जी बोलो सच्चिदानंद। तो विधिवत उपसन्न होते थे। देखो एक निवेदन करूं कि पहले भौतिक पदार्थों की बहुत महत्ता नहीं थी, अपने स्वरूप में स्थिति, अपने स्वरूप की जानकारी नारायण है बहुत महत्वपूर्ण थी, और वो जिससे खराब हो जाए वो काम ऋषि मुनि नहीं करते थे। उपसन्न का मतलब है कि कोई सूखी लकड़ी लेकर के शिष्य अब गुरु जी के पास जाता था और बोलता था कि मैं उपसन्न हूं, और मुझे आप जो जानते हैं सत्य की प्राप्ति की लिखा है ना इसमें, विधुर प्रसन्ना पप्रच्छ, इसमें लिखा है ना सर्वविदं विज्ञातं भवति, इस विद्या के लिए उपसन्न हुआ कि ये मेरे को मालूम नहीं है, आप कृपा करके हमको बताइए नारायण। तो क्या ले जाते थे, या तो दातून ले जाते थे, या तो लकड़ी ले जाते थे, या कोई आसन ले जाता था नारायण। यही बहुत यही बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु होती थी। एक और निवेदन करूं कि गुरु को भी ज्यादा जरूरत नहीं होती थी कि अरे ये लकड़ी क्यों लाया है, इससे क्या होगा नारायण नारायण नारायण। उनके मने शिष्य के हृदय में भी और गुरु के हृदय में सत्य की जो खोज थी या सत्य की जो जिज्ञासा थी, यही महत्वपूर्ण वस्तु थी। और ऐसा कोई सत्य का जिज्ञासु मिल जाए तो गुरु उसी से प्रसन्न हो जाते थे, खुश हो जाते थे। लकड़ी ले जाना तो एक नारायण है ये विधि में आता है, नहीं लकड़ी के देश में तो रहते ही हैं। चलो ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा लकड़ी से हवन उनकी हवन करते थे तो इससे उनका सहयोग हो जाता था। तो ये नारायण जैसे पहले आवश्यक था पहले के युगों में इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए, वही तरीका आज भी है। जैसे कि मैंने आपसे निवेदन किया था कि कोई काल्पनिक नारायण है, हाँ साधनाएं अपने ढंग से शास्त्र विरुद्ध। अब देखो आप देखिए योग योग होता है तो मेरे नारायण उसमें यम नियम बहुत आवश्यक होते हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि विधिवत उपसन्न विधि विधिवत है ना, विधिवत का मतलब है कि विधि को जानने वाला। अरे मत प्रत्यय इसी अर्थ में होता है, यह वही प्रत्यय नहीं है नारायण। तो यदि विधि पूर्वक जाकर के शरण में हुआ और विधि पूर्वक एक निवेदन और करूं इस प्रसंग में, मुझे एक घटना याद आती है कि श्वेत केतु थे, श्वेत केतु तो वो नारायण है, उनके पिताजी उद्दालक ने कहा कि बेटा मैंने तुमको सब कुछ पढ़ा दिया अब बेटा को बड़ी अकड़ हुई कि जब मैंने सब कुछ जान लिया तो अब हमारी बराबरी का कौन हो सकता है। हमने सब कुछ जान लिया, ऋग्वेद जान लिया, यजुर्वेद जान लिया, हम सामवेद जान लिए, ये मैंने त्रि विद्या जान लिया, अथर्ववेद जान लिया, गंधर्व विद्या जान लिया, शिल्प जान लिया, तमाम प्रकार उनको अभिमान हो गया। नारायण ने उपसन्न की आपको बात बता रहा हूं। तो वो नारायण घूमता फिरता पंडितों को पराजित करता एक अश्वपति राजा थे, सुना होगा आप भी। अश्वपति राजा के यहां गए और ऐसा तो बृहदारण्यक में नहीं लिखा है, पर मैंने महात्मा महापुरुषों सुना है कि अश्वपति राजा कुछ सेवा करा रहे थे अपने सेवकों से, और ये इनकी यह व्याहत गति बिना पूछे भी सब जगह जा सकते थे, ऐसा सोच करके राजा को बिना सूचना दिए हुए अंदर चले गए। कायदा तो ये था, भले ही इनको छूट मिली हो फिर भी मर्यादा का पालन करते हुए इन्हें सूचना देनी चाहिए थी राजा को कि मैं आपसे मिलने आया हूं। नारायण नारायण। तो राजा को जरा थोड़ा सा मन में आया, और सुन भी रहा था कि महाराज श्वेत के तो बड़ा पंडित है, शास्त्रार्थ करके इधर राज्य की ओर आ रहा है, पर उन्होंने सोचा कि ये तो अशिष्टता की कोटि में है, ये काम ऐसा श्वेत केतु को नहीं करना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की बड़ी विशेषता रही है, कोई महात्मा महापुरुष या कोई पंडित आता था तो गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति उठ करके आदर करता था, और ये और न जाने किस कौन सी युग की बात है, मैं तो समझता हूं सही सदयुग की बात होनी चाहिए ये, तो तब तो कहना ही क्या था। परंतु तो अश्वपति अपनी पलंग से नहीं उठे और लेटे लेटे ही ना है, लेटे लेटे पांच प्रश्न उन्होंने किए नारायण नारायण, कि आप वह विद्या जानते हो, पंचाग्नि विद्या जानते हो, स्वर्ग क्यों नहीं भरता है ये जानते हो, इस प्रकार से पांच प्रश्न किए। ये मैं ही बता रहा हूं कि कौन कौन प्रश्न किए, उसके उत्तर क्या है। निवेदन ये कर रहा था कि उनको पांच प्रश्न के एक भी उत्तर नहीं आया। अब घूमने लगे तो राजा उठ के खड़े हो गए और सेवकों से कहा कि मधुपर्क लाइए, पाद्य अर्घ लाइए, देवता का हम पूजन करेंगे। अब उसको गुस्सा आ गया कि पड़े पड़े ही पांच प्रश्न किया, पड़े पड़े सब इनका हम आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे। गुस्से में वो पिताजी के पास चले गए, पिताजी के ऊपर बरसे, उन्होंने कहा आप तो हमको बड़ी धोखा दी, आपने कहा था हम सब तुमको पढ़ा दिए, सो हम एक अश्वपति छात्र बंधु है, छात्र बंधु माने जो अपने अपने धर्म के अनुसार ना रह रहा हो उसे छात्र बंधु कहते हैं। तो छात्र बंधु ने पांच प्रश्न किए, उन पांच प्रश्नों के हमें एक भी उत्तर नहीं आए, और आपने कहा था हमको कि हमने सब पढ़ा दिया। तो दालक ने विनम्रता से कहा कि बेटा मैंने ये कहा था कि जो मुझे आता है सो मैंने तुम्हें सब पढ़ा दिया और तुम अर्थ गलत ले लिए। अच्छा तो क्या पूछा है उन्होंने, तो बोले कि ये प्रश्न पूछे। तो उन्होंने उद्दालक ने ईमानदारी से कहा कि हमको भी ये नहीं आते, अब ये विद्या के लिए अश्वपति को हम दोनों को चलना चाहिए अश्वपति के पास में, नारायण नारायण। तो उन्होंने नारायण बेटे ने कहा कि नहीं हम अब नहीं जाएंगे छात्र बंधु के पास, उद्दालक विनम्र है, नारायण पवित्र आत्मा है, ये बहुत महत्वपूर्ण विद्या थी जो पांच विद्या जिनको ये नहीं जानते थे, उस पवित्र विद्या को लेने के लिए अश्वपति के पास उपसन्न हुए। अश्वपति ने कहा कि जब प्रार्थना किया ब्रह्म विद्या के लिए स्वागत सत्कार करने के पश्चात पूछा आपके आने का क्या कारण है। बोले मेरे बेटे से जो आपने 5 प्रश्न किए उन प्रश्नों के उत्तर के लिए आया हूं और मुझे कुछ वस्तु की जरूरत नहीं ना है। तो अशोपति ने कहा कि भाई आप तो आप आज तक जो उपदेश होता था वो ब्राह्मण ही देता रहा और ये नारायण है ये विपरीत कैसे हो सकता है। तो उन्होंने जब आग्रह किया कि नहीं हम आपके यहां इसी विद्या के लिए आए हैं, उसने कहा कि तुम वाणी मात्र से उपसन्न हो जाओ, वस्तु लेके नहीं और अपने स्थान में रह करके नारायण। अब मैंने जहां आपका स्थान पहले था ये विद्या की जो जिज्ञासा लेकर के आए हैं इसके पहले जो स्थान आपका था वहीं बैठ करके वाणी से उपसन्न हो जाइए नारायण नारायण। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ये विद्या प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को उपसन्न होना पड़ता है नारायण। अब वो तरीका यही है कि अपने पास जो हो वह ये नहीं कि कोई कीमती वस्तु, जैसे कि मैंने आप पहले निवेदन किया था सूखी लकड़ी ले जाते थे या आसन ले जाते थे या कोई फल मूल ले जाते थे रख करके और बैठ करके फिर नारायण प्रार्थना करते थे। देखो क्या प्रार्थना करते हैं, विधिवत उपसन्ना पप्रच्छा, क्योंकि बिना उपसन्न हुए अशुपति के प्रसंग से पता चलता है कि ये विद्या व्यक्ति की जिंदगी में प्रतीक्षित नहीं होती है। अरे बाबा, भगवान श्री कृष्ण ने भी तो कहा कि भाई उपसन्न किसके पास होना है कि जो इस विद्या को जानता हो, पर उपसत्ति बिना ये विद्या संभव नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण को कहा अपने लोक की भाषा में कि तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति दे ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना नारे। तो अब पूछे कस्मिन नो भगवो विज्ञाते, पहले उपसन्न हुए तद विद्धि प्रणिपात हुए ना। वहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि तद विद्धि प्रणिपाते न परिपाते न तद विद्धि मने सत्यम विद्धि फिर परिप्रश्ने न, तो उसका अनुसरण करते हैं दूसरा प्रश्न करते हैं सेवया, तो आपको बता देंगे आगे। तो कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते, ये प्रश्न किया, सर्वमिदं विज्ञातं भवति, हे भगवान नारायण नारायण वेद में भगवो कहते हैं भगवश नारायण भोग भगो अघोष है ना, भोष भगोष अघोष वेद में नारायण भगवान के अर्थ में भगवो का प्रयोग करते हैं। हे भगवान आप ये बताओ कि ऐसी कौन सी विद्या है जिसके जानने से सब कुछ जाना जाता है। आपने ये छांदोग उपनिषद में ना 9 बार श्वेत केतु को ये तत्वसी महावाक्य का उपदेश 9 बार नारायण, वो शंका करते थे और वो बोलते थे नारायण श्वेत केतु की पिताजी ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है कि एक के जानने से। तो बोले नहीं नहीं बेटा, एक के जानने से सबका ज्ञान हो जाता है। यही बात यहां पूछ रहे हैं कि किसके ज्ञान होने से सबका ज्ञान हो जाता है नारायण। अरे बाबा, जैसे समुद्र के ज्ञान होने से समुद्र के सारे तरंग हैं, फेन हैं, बुदबुद हैं, लहरों का सबका ज्ञान हो जाता है। जैसे नारायण है एक स्वर्ण की पहचान हो जाए तो कंकन है, कुंडल है, जंजीर है, इन सब का ज्ञान हो जाता है नारायण नारायण। क्योंकि जो वस्तु जिसके बिन गृहित ना होवे वह वस्तु उससे भिन्न नहीं होती नारायण नारायण। आप देखिए, आप देखिए, स्वर्ण के बिना किसी जंजीर का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है नारायण नारायण। इसी प्रकार जितने भी स्वर्ण के या लोह के बने हुए अस्त्र या आभूषण हैं, स्वर्ण से बने हुए आभूषण, लोह से बने हुए अस्त्र शस्त्र, ये मेरे नारायण बिना मूल धातु को, मूल धातु को उन आकृतियों में, उन नामों में, उन रूपों में यदि मूल धातु न होए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वो जानन्ति कश्चित माम वेति तत्वता, घटपटत्वेन ये व्यक्ति रूपेण तो सर्वे जानन्ति, घट रूप से, पट रूप से, आदमी के रूप से भगवान को तो बहुत लोग जानते हैं, कहते हैं ना। पर कहते हैं कि तत्व से मुझे कोई जानता है, तो घड़े में तत्व क्या है? मिट्टी। घड़े में तत्व मिट्टी है, लेकिन जो बहिर्मुख लोग होते हैं उनको जिस प्रकार से घट का स्फुरण या घट की प्रतीति जितनी सुस्पष्ट होती है उतनी प्रतीति मिट्टी की नहीं होती है। नारायण नारायण नारायण। पर यदि विचार की दृष्टि देखो तो विचार असहिष्णु घट है, विचार करोगे तो घट नाम की कोई चीज नहीं मालूम पड़ेगी। तो तत्व रूप तत्व क्या है घट का? मिट्टी। आभूषण का तत्व क्या है? स्वर्ण है। तरंगों का तत्व क्या है? जल है। यदि जल को जान लिया जाए तो उससे उत्पन्न होने वाली चीज का ज्ञान नहीं हो जाएगा? नारायण नारायण नारायण। तो ये बोलते हैं, ऐसी बात बोलते हैं नारायण नारायण कि भाई एक के विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाता है, वो क्या है। अब देखो 8:30 हो गया ना, 7:30 से 8:30 तक अगला प्रसंग आपकी सेवा में कल निवेदन करूंगा। और इन शब्दों के साथ नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने। व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति।